मिनट मोहतरमा, आप वहाँ भूल आई थी।
अरे शुक्रिया,
कोई बात नहीं।
एक्सक्यूज मी,
ये खत शहीद सईद खुजा सेफर के हैं, अब्बास के बचपन के दोस्त। लैली के लिए मंगवाए थे, उसकी बीवी ने अमेरिका से भेजे हैं मेरे लिए। दिलचस्प है, ये अब्बास के जंग के इनकलाब के दौरान के, इन्हें पढ़िएगा।
लैली की बात कर रहे थे मुलाकात के बारे में।
तीसरी बार मैंने उसे अपने घर बुलाया, मैं उस पर भरोसे का एहसास करने लगी थी। बड़े ही इश्क और मोहब्बत और अजीब से जज्बे से अब्बास की तस्वीरों को, दीवार पर लगी उसकी यादगारों को, सारी चीजों को देखा। आओ बैठो।
जी आपका शुक्रिया।
दरअसल 2 साल हो गए हैं कि मैंने किसी को भी अब्बास के बारे में इंटरव्यू नहीं दिया है।
क्यों?
मुझे लगता है अब्बास की जिंदगी की कहानी को 2 घंटे की इंटरव्यू में बयान नहीं कर सकते हैं, वरना वह बहुत से लोगों की कहानी की तरह हो जाएगी। इसीलिए मैंने अब्बास से वादा किया था कि किसी को भी इंटरव्यू नहीं दूंगी जब तक वो खुद किसी को मेरे पास नहीं भेजे।
यानी आप कहना चाहती हैं कि खुद शहीद बाबाई ने मुझे यहाँ भेजा है?
तुमने कहा था तुम्हारी कुछ किताबें छपी हैं।
जी हाँ।
क्या मैं पढ़ सकती हूँ?
ठीक है, अगली बार जब भी हम मिलेंगे तब आपके लिए ले आऊंगी।
शुक्रिया, उन्हें जरूर ले आना।
जी जरूर।
शुरू कर सकते हैं।
जी बस आप मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए। बहुत अच्छे, तैयार है, शुरू करें प्लीज।
अब्बास मेरी फूफी का बेटा था, हम दोनों एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, कज़वीन में। हमारे घर से उनके घर तक 5 मिनट से ज्यादा का रास्ता नहीं था। अब्बास हमारे घर बहुत आया करते थे। मुझे याद है मेरी एक छोटी बहन थी जो मेरी माँ के अलावा सिर्फ अब्बास के बगल में सोया करती थी। मैं अपने बचपन में ही समझ गई थी कि वो उसके आसपास के लोगों से बहुत अलग थे। उसका एक खास अंदाज था, दिखावा नहीं था। हमेशा किताब और पेंसिल कम लाते थे, इसे उसे दे देते थे। सुबह सवेरे स्कूल की दीवार फलांग कर अंदर चले जाते और आंगन में झाड़ू लगाते। बूढ़े लोगों के साथ उनकी बहुत जमती थी। कभी कभी लोग देखते थे कि ये 10-12 साल का बच्चा एक 70 साल के बूढ़े के साथ घंटों बातें कैसे किया करता है। पता है, तुम लोगों के मुताबिक अब्बास हर तरह से एक अच्छा लड़का था।
हेलो,
सलाम अलैकुम करमी साहब, हाजियान हूँ।
वालेकुम सलाम डॉक्टर, क्या लैली को कुछ हो गया?
नहीं कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कुछ वक्त निकाल कर हॉस्पिटल आ सकते हैं?
आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये साबित करती है कि एक मरीज जो कोमा में चला गया है उसके साथ कुछ चीजों के बारे में बात करने से उसके ठीक होने में मदद मिलती है। इस बात का मतलब ये है कि उसके बदन का सिस्टम जो सुस्त हो गया है उसे दोबारा फाल कर देता है, ये साबित किया गया है। लेकिन आपकी बीवी के बारे में मुझे लगता है कि उनका कोई काम अधूरा पड़ा हुआ है, और वो सफर जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ था इसी अधूरे काम के लिए था।
उस सफर के बारे में तो नहीं पता, लेकिन लैली एक शहीद की जिंदगी के बारे में तहकीक कर रही थी।
यानी आपको पता है? हाँ, शहीद अब्बास बाबाई, मलीहा हिकमत के शौहर।
इन दोनों बातों का आपस में क्या राबेता है?
जाहिरन लैली का लगाव इस प्रोजेक्ट के साथ एक मामूली रिसर्च प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा था। यानी जब भी आप या मलीहा हिकमत शहीद बाबाई के बारे में बात करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो शहीद के मुतालिक हो, मुझे लगता है उसके होश की सतह बढ़ जाती है। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था, इसीलिए आपको बता रही हूं। शायद इस रिसर्च प्रोजेक्ट का आगे बढ़ना किसी ऐसे के जरिए जिससे लैली मोहब्बत करती है उसके ठीक होने में बहुत मदद कर सकता है।
लैली की तबीयत कैसी है?
वैसी ही है।
फारूक का कुछ पता चला?
नहीं,
मैंने यहाँ वहाँ से पूछताछ की तो पता चला कि फारूक की पहचान अब्बास बाबाई से कैसे हुई।
कैसे हुई?
फारूक इस्फहान के नजदीक किसी गांव से है, उसका नाम जियार है, उसे अब्बास आबाद भी कहते हैं। हेलो मसूद, आवाज आ रही है?
हाँ हाँ हाँ, बोलो।
अरे कहाँ खो गए थे भाई?
जब फारूक उस वक्त ईरान में था ही नहीं तो उसे ढूंढने का कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं ईरान में वापस आया उस दिन लैली कहाँ जा रही थी।
देखो मुझे ऐसा लगता है।
आरश, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ।
क्या हो गया मसूद?
आसिम चाचा।
सलाम मसूद साहब, तुम कब आए? गाड़ी पार्किंग में नहीं दिखी तो मैं डर गया। खैरियत से आ गए मेरे बेटे, कैसे हो?
आपके पास चाबी नहीं है क्या कि आप दीवार के ऊपर से आते हैं?
दलाल के पास एक चाबी है, मेरे पास नहीं। मैं करमी साहब से बहुत दिनों से नाराज हूँ।
शायद भूल गए होंगे।
इतना ही? 6 महीने हो गए मैं दीवार फांद कर आता हूँ। अगर पुलिस मुझे पकड़ ली होती या खुदा ना करे गिर जाता और हाथ पैर टूट जाते तो कौन आकर मेरे बीवी बच्चों का ख्याल करता?
लेकिन अब खुदा का शुक्र कुछ भी नहीं हुआ है।
सही है, खुदा का शुक्र। क्या तुम्हें इन पेड़ पौधों की बिल्कुल परवाह नहीं थी? क्या मेरे बारे में सोचा? मेरी उम्र भर की खिदमत को इतनी जल्दी भूल गए?
हम इस घर को बेचने वाले हैं चाचा, अब हमारे लिए इन पेड़ पौधों की कोई अहमियत नहीं।
तुम्हारे लिए अहमियत नहीं है क्योंकि तुमने इनकी अपने बच्चों की तरह परवरिश नहीं की है, समझ गए? तुम जाओ अपना काम करो, मेरा काम पूरा होते ही मैं दरवाजा बंद करके चला जाऊंगा।
मसूद के साथ शादी की बात को लेकर मेरी बाबा के साथ बहस होने के बाद मैंने अपना सामान बांधा और मसूद के दफ्तर रहने चली गई। आज मुझे यहाँ रहते हुए पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। लेकिन माँ, आप तो मुझे समझती हैं, तो बाबा को क्यों नहीं समझाती? देखिए, अगर मैं यहाँ मसूद के दफ्तर में आई हूँ और जैसा कि आप लोग कहते हैं यहाँ पनाह ली है, तो ये सिर्फ सुकून के लिए है, मेरे काम के लिए है। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है माँ, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूं ना। देखिए, नहीं, मुश्किल ये है कि मैंने एक काम शुरू किया है और मुझे उसे जल्द अज जल्द पूरा करना है। अब चाहे मैं ईरान से चली जाऊं या चाहे यहीं रहूं। जी हाँ, आप किस लिए परेशान हैं? सही मौका आते ही आपको बताऊंगी, मुतमईन रहें। जरूर, आप टेंशन ना लें। जी हाँ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मलिहा साहिबा।
वालेकुम सलाम, क्या हम आज मिल सकते हैं?
लेकिन आपने तो कहा था कि आज आप बहुत मसरूफ हैं।
मसरूफ हूँ, लेकिन तुमसे मिलना जरूरी है।
आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना?
होना चाहिए।
ठीक है, आपके ही घर आना है ना?
नहीं, स्कूल के दफ्तर में आ जाओ।
जी, बस एक मिनट होल्ड करें। हाँ, एक मिनट बस। माफी चाहती हूँ। आज करीब 12 बजे ठीक रहेगा?
बहुत अच्छे, मैं इंतजार करूँगी।
जी जरूर,
दफ्तर आ जाओ।
जरूर।
तुम्हारी किताबें पढ़ी,
कैसी लगी?
मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्हें छापने की इजाजत कैसे मिली।
आप फिक्र ना करें, मेरी आखिरी किताब को छापने की इजाजत नहीं मिल रही है।
जब हम आखिरी बार मिले थे तो तुमने कहा था कि अब्बास पर तहकीक करने की सबसे अहम वजह यह है कि उसकी सोच आजाद थी।
और निडर भी। जब भी उन्हें लगता था कि उनकी बात सही है तो उसे कह देते थे बिना किसी झिझक के।
लेकिन अब्बास अपनी जिंदगी में हर लम्हे में खुदा को महसूस करता था। तुम्हारी किताबों में खुदा कहीं मौजूद नहीं है।
ऐसा लग रहा है कि आप बहाने ढूंढ रही हैं ताकि मेरी मदद ना करनी पड़े।
मैं नाइंसाफी नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारी नज़र बिल्कुल इंसानी है, लेकिन तुम्हारी नज़र में और अब्बास की, जो पूरी तरह से खुदा के वजूद को महसूस करता था, बहुत फर्क है।
खुदा के वजूद को किताबों से नहीं जोड़ना चाहिए, दूसरी चीजों की तरह जिन्हें हम लिखते और पढ़ते हैं।
खुदा को इंसान की जिंदगी के हर पहलू में मौजूद होना चाहिए ताकि उसका असर दिख सके, लेकिन तुम्हारी किताबों में खुदा के वजूद का बिल्कुल एहसास नहीं होता है, और इसी वजह से तुम अब्बास को वो जैसा है वैसा ही लोगों को पहचानवा नहीं सकोगी।
मुझे लगता है आप बहुत जल्द फैसला कर रही हैं।
लेकिन ये फैसला हकीकत के मुताबिक है। हेलो कुशा, चाय ले आओ। शुक्रिया। हम ये काम मिलकर करेंगे।
यानी क्या?
बैठ जाओ। ये तहकीक पूरी तरह से मेरी निगरानी में होनी चाहिए। जहां भी मुझे तुम्हारे मजमून पर एतराज हुआ तो तुम्हें बदलना होगा।
आप अपने आप को अब्बास का मालिक समझती हैं?
मैं अब्बास की वारिस हूं।
मेरे नज़रिए के मुताबिक सभी लोग अब्बास के वारिस हैं, क्या उन्होंने अपने वतन के लिए और उसके लोगों के लिए अपनी जान नहीं दी थी?
लेकिन तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा।
मजबूर तो नहीं हो, लेकिन क्योंकि मैं अपने काम की कद्र जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है, तो मैं आपको अपने मजमून की फाइनल कॉपी देने के लिए तैयार हूँ, ताकि आप अपनी राय दे सकें।
अगर मंजूर नहीं किया तो?
तो फिर उसके बारे में उसी वक्त बात करेंगे।
सलाम वालेकुम।
ये लीजिए कासिम चाचा।
सलामत रहो बेटा।
ये लीजिए, सलामत रहे।
शुक्रिया।
कासिम चाचा, आप इस दीवार के ऊपर से कैसे आया करते थे अंदर?
अरे बाबा, ये हाथ पैर में अभी भी बहुत जोर है।
शरबत पीजिए, गर्म हो जाएगा।
इससे आगे अब्बासाबाद की रिकॉर्डिंग में मौजूद है, लेकिन उसे लिखा नहीं गया है।
आपका गांव जियार
या अब्बासाबाद?
अब्बासाबाद।
सलाम।
सलाम अलैकुम। माफ कीजिए, आईसीयू में फूल ले जाना मना है।
मना है
जी, एलर्जी होती है। शुक्रिया।
मैं आज तुम्हारे लिए फूल आया था। आईसीयू के दरवाजे पर मुझे कहा गया कि फूल लाना मना है, मेरे हाथ से ले लिए। आज मैंने वो ब्लू वाला शर्ट पहना है जो तुम मेरे लिए लाई थी, बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन से तुम्हारे बहुत से नोट्स और रिकॉर्डिंग्स को देख रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि थोड़ी सी दीवानी हो, लेकिन जब तुम्हारे नोट्स पढ़े तो पता चला कि तुम बहुत ज्यादा दीवानी हो। जो भी तुम्हारी जगह होता तो इस हादसे के बाद जिसमें तुमने मौत को अपने सामने देखा, मुमकिन नहीं था कि पूरी जिंदगी में कभी परवाज का नाम भी लिया होता। कल रात बैठकर तुम्हारी नोट्स की थोड़ी एडिटिंग की। मुझे पता है ये मेरा काम नहीं है, तुम्हें खुद उन्हें फाइनल करना होगा। पता है दिन ब दिन लिखते लिखते तुम्हारी कलम में महारत आ रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता नोवेल लिखना शुरू कर दो। अब्बास के रिश्ते वाली बात मैंने पढ़ी, उसके इसरार को। और हाँ, वो वाला जिसमें हाजी इस्माइल अब्बास के वालिद जब आंगन में कबाब को हवा दे रहे थे और अब्बास एक दिल टूटा हुआ आशिक, बेचारा F-5 फाइटर जेट का पायलट अपनी मोटरसाइकिल को आंगन में रिपेयर कर रहा था, बहुत अच्छा लिखा था लैली, बहुत अच्छा। इतना कि दिल चाह कबाब खाऊं। और तुम्हें प्रपोज भी किया,
मर गए थे कि एक लावारिस की तरह सर झुकाकर अकेले ही रिश्ता मांगने तुम चले गए?
नहीं बाबा जान, खुदा ना करे, लेकिन खुदा की कसम मेरे पास दलील थी।
दलील थी? ए बाबा, तुम्हें लगता है तुम 2 साल अमेरिका जाकर आए तो तुम बहुत बड़े हो गए हो?
ऐसा कब कहा बाबा जान, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं गया था ताकि वो बातें कर सकूँ जो अगर रस्मी तौर पर जाते तो नहीं कर पाता, अपने दिल की बात कर सकूँ। अगर अम्मी और आपके साथ जाता तो आपको क्या हुआ होता? फिर से वही 2 साल पहले की तरह गोल गोल बातें करते और खड़े होकर उनके घर से निकल आते और मेरी कहानी घूम फिर के वहीं रह जाती। और उसके अलावा मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो कि खुदा ना करे कि दोबारा आप और अम्मी उदास हो जाएं।
ठीक है, अब जब तुम अकेले ही गए और जैसा कि तुम कहते हो अपने दिल की बात करके आए तो बात बन गई।
अगर बनी नहीं है तो बिगड़ी भी नहीं, कम से कम मैं अपने दिल का मखरूज तो नहीं हूँ। बस इतना ही बाबा जान।
जाओ बेटा, जाओ जाओ, खुदा सलामत रखे।
वाह सईद भाई।
सलाम।
सलाम, अंदर आओ।
क्या बात है?
बाबा जान के स्पेशल कबाब। आओ, बड़े अच्छे मौके पर आए हो, अम्मी और बाबा भी हैं अंदर।
नहीं, मुझे जाना है, जीते या हारे।
क्या कहूँ, बताऊंगा तुम्हें, तुम बताओ कोई खबर।
एयरबेस फोन किया था, अपनी पोस्टिंग की जगह पता चल गई है।
खैरियत है इंशाल्लाह। कहाँ?
मैं मेहराबाद, तुम देसफुल। परसों तेहरान जाकर अपॉइंटमेंट लेटर लेना होगा, हमारी किस्मत में साथ रहना नहीं था।
ये अच्छा नहीं हुआ।
शायद कुछ कर सकते हैं, अब तेहरान जाकर देखते हैं क्या हो सकता है। परेशान मत हो, शायद मैं भी देसफुल आ जाऊं।
नहीं भाई, किस लिए आओगे?
खुदा हाफिज। और सुनो, तुम्हारे मामू हिकमत साहब मिले थे।
तो उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने पूछा तो मैंने भी अपनी पोस्टिंग बता दी। खुदा हाफिज।
ठीक है।
सलाम अलैकुम।
सलाम, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ, सलामत रहो। क्या है, उदास क्यों हूँ?
नहीं, ठीक हूँ।
तुम्हारी माँ कहाँ है?
माँ खाला के घर गई हैं।
आज फोन करा था कि अब्बास यहाँ आया था।
जवाब भी दे दिया।
उसकी बात का बुरा नहीं लगाओ, जरूर तुम्हारी बेहतरी चाहती है। अब्बास की पोस्टिंग हो गई है।
कहाँ?
देसफुल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह सोच लो, सिर्फ एहसास की बुनियाद पर फैसला नहीं करना। उस वक्त मुमकिन है कि...
माफ कीजिए बाबा जान, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं?
ठीक है।
ये है 2, 4 + 7 = 11 और 1 कैरी ओवर का 1, 4 5, 5 + 3 = 8 और ये एक टोटल हो जाएगा 1812।
टीचर इजाजत है?
बोलो।
आपका टोटल गलत है, मैंने 2 मरतबा सॉल्व किया तो टोटल आता है 1862।
शाबाश, मैं ये देखना चाहती थी कि तुम में से किसका ध्यान बोर्ड पर है। 8 और 2 = 7 ये। शाबाश बेटी। छ और 2 आज के लिए काफी है, अपनी किताबें जमा करके घर जा सकते हो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज,
खुदा हाफिज,
खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
टीचर मैं जाऊं?
मेरी जान,
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज गुड़िया। अब्बास सलाम वालेकुम। अभी ये खत लिखते हुए मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारे अमेरिका जाने से पहले मैंने जहन बना लिया था और तुम्हें भी अच्छे से पता था मेरा जवाब क्या है, लेकिन मैं अब शक में पड़ गई हूँ। अब्बास, तुमने जो 2 साल अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग में गुजारे, मैंने भी भले तुम्हारे जितनी नहीं लेकिन जहमतें उठाई हैं। एक लड़की के लिए अपने घर से 2 साल की दूरी बहुत सख्त होती है। तुम वो दिन जरूर नहीं भूले होगे जब तुम मुझे स्कूल छोड़ने आते थे और रास्ते में हुई हमारी बातें भी। तुम डॉक्टर बनना चाहते थे और उसी बचपने से ही टीचर बनने का इश्क मेरे पूरे वजूद में समाया हुआ था। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है और वो यही है अब्बास, मुझे नहीं पता क्या करूं। तुम्हारे साथ शादी करके देवजोल जाना मेरी पूरी जिंदगी की आरजुओं को बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता क्या करूं।
हेलो, बोलिए।
सलाम अलैकुम बाबा।
वालेकुम सलाम बेटी, ठीक हो? कहाँ हो?
ठीक हूँ, पब्लिक फोन से कॉल कर रही हूँ। आपका काम कब तक पूरा हो जाएगा?
मुझे लगता है तकरीबन आधे घंटे में। लेकिन क्यों?
मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ।
तो बोलो।
फोन पर बात नहीं हो पाएगी।
ठीक है, घर आता हूँ तो साथ में बैठ के बात करेंगे।
मैं आपको घर से बाहर मिलना चाहती हूँ। इमामजादे हुसैन ठीक रहेगा?
ठीक है बेटी,
तो वहाँ मिलते हैं। खुदा हाफिज।
अगर आप इजाजत दें तो मैं अब्बास को हाँ कहना चाहती हूँ।
मैं हमेशा से चाहता था कि तुम अपने पैरों पर खड़ी रहो, तुम खुद तुम्हारी जिंदगी के फैसले लो। आज तुम तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रही हो। फैसला जो भी हो मैं उसका एहतराम करूंगा, लेकिन तुम मुझे भी एक हक दो तुम्हारे बाप होने के लिहाज से।
हाँ, सभी वालदैन अपनी बेटी की शादी के वक्त परेशान रहते हैं,
लेकिन अब्बास जैसे के साथ जिंदगी गुजारना जिसका एक खास पेशा है बहुत सख्त है। देखो बेटी, मैं अब्बास के लिए तुम्हारे ऐसा साथ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मुझे यह भी पता है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम दोनों एक दूसरे के लायक भी हो, लेकिन साथ जिंदगी गुजारने की बात अलग है, शादी कोई एक दो दिन की बात नहीं। कुछ चीजें हैं जिन्हें शुरुआत में नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त बीत जाने के बाद सब सामने आ जाती है।
अगर आपका मतलब मेरा काम है तो मैं एक दो साल के लिए उसे छोड़ने को तैयार हूँ, ताकि इस दौरान मैं अपना घर बसा लूं।
मेरा मतलब ये नहीं है बेटी, जब से तुम पैदा हुई हो मुश्किलात का सामना नहीं किया है। तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद था, अब तुम किसी ऐसे के साथ शादी कर रही हो जिसका पेशा ऐसा है कि उसे हर रोज मुल्क के अलग अलग कोने में जाकर मुल्क की खिदमत करनी होगी। अभी भी वो अपना सामान बांध रहा है ताकि वो देश फूल जाए। क्या तुम इस तरह बंजारे की जिंदगी गुजार सकोगी? मुबारक हो।